हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 13वां अध्याय श्लोक संख्या 15 और 16। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जायमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासन व्रजवधु वर्गीनया कपिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेम तुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभुर्म्यतमिदं तथा ग्रहो न परः। करारिविन्दे न पदारिविन्दं मुखारिविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारि हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे बिभस्वा मृत्युमेतदेव गोविन्द दामो धर्मादवेति। मूकं कुरुतु वाचालम् पङ्गुं लङ्घयति किरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणम्। ग्रन्थः श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। पहला स्कंद 13वां अध्याय श्लोक संख्या 15 और 16। कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सूत गोस्वामी बताते हैं, अभिव्रत अर्यमादंडम्
यथावत् अघकारिषु यावत् धारेषु शूद्रत्वम् शापात् वर्षशतं यमः अभिव्रत् अर्यमादण्डम् यथावत् अघकारिषु यावत् धारशूद्रत्वम् शापाद्वर्षशतं यमः अभिव्रत् अर्यमादण्डम् यथावत् अघकारिषु यावत् धारशूद्रत्वम् शापाद्वर्षशतं यमः। सूत गोस्वामी कहते हैं अभिव्रत अर्यमादण्ड, अभिव्रत मतलब दिया गया था अर्यमा जो पितरों के नायक हैं अर्यमा जी उनको दंड, ये दंड का अधिकार। यथावत अघकारिषु, अघकारिषु मतलब जिस जिस जो लोग जो जो अपराध करते हैं वैसे तो उनका दंड यमराज दी देते हैं, लेकिन अभी तो यमराज जी तो पृथ्वी पर थे किसके रूप में, विदुर जी के रूप में। तो फिर भी इसका मतलब ये थोड़े है कि उस समय तक किसी को दंड नहीं मिला हुआ होगा। लोग तो अपने अपने समय पर मरते होंगे और मरने के बाद उनको उनके कर्मों के अनुसार यथावत अघकारिषु जैसे जैसे उन्होंने अपराध किए होंगे, पाप किए होंगे, तो उनके अनुसार दंड तो मिलना होगा ना। तो वो दंड कौन दे रहे थे, अभिवृत अर्यमा, अर्यमा जी उनको दंड देते थे। यावत धार शूद्रत्वम, जब तक यावत मतलब जब तक शूद्रत्व स्वीकार किया था, कब तक किया था, शापात वर्ष शतम यमः, यमराज जी ने 100 वर्ष तक, वर्ष शतम मतलब 100 वर्ष तक ये श्राप स्वीकार किया था कि मैं शूद्र बनकर इस संसार में रहूंगा, क्योंकि वो भगवान की लीलाओं के सहभागी होना चाहते थे और उन तब तक उनकी ड्यूटी अर्यमा जी पूरी करते थे वहां पर यमपुरी में। अनुवाद, मंडूक मुनि के द्वारा शापित होकर जब तक विदुर शूद्र का शरीर धारण किए रहे तब तक पाप कर्म करने वालों को दंडित करने के लिए यमराज के पद पर अर्यमा कार्य करते रहे। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं विदुर शूद्र स्त्री के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण अपने भाइयों धृतराष्ट्र तथा पांडवों के साथ राज्य के उत्तराधिकार से भी वंचित थे, तो भला वे धृतराष्ट्र तथा महाराज युधिष्ठिर जैसे विद्वान राजाओं एवं क्षत्रियों के शासक पद पर कैसे रह सकते थे। इसका पहला उत्तर ये है कि यद्यपि वे जन्म से शूद्र माने जाते थे, लेकिन चूंकि उन्होंने ऋषि मैत्रेय के आदेशानुसार आध्यात्मिक उन्नति के लिए संसार का परित्याग कर दिया था और आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की थी, अतएव वे आचार्य पद को ग्रहण करने के लिए पूर्णतया सक्षम थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो दिव्य ज्ञान या ईश तत्व से भिज्ञ है, वह चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र, गृहस्थ हो या सन्यासी, गुरु होने के योग्य है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नया, यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। चाहे कोई विप्र यानी ब्राह्मण हो या सन्यासी हो या शूद्र ही क्यों न हो, अगर वो कृष्ण तत्ववेता को तत्ववेता है, कृष्ण को तत्व से जानता है,
तो आप उसको गुरु बना सकते हो, वो गुरु बनने के योग्य है। मतलब ये नहीं देखना है कि वो जन्म से क्या है, ये देखना है कि वो कर्म से क्या है। तो क्योंकि वेदुर जी शुरू से तो एक शुद्र स्त्री के गर्भ से पैदा हुए थे, तो शुद्र थे, परंतु उन्होंने मैत्रेय मुनि से कृष्ण तत्व को समझा था, तो इसलिए वो गुरु पद थे।
इसलिए यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज के महल में आचार्य पद को ग्रहण करने के सर्वथा योग्य थे। श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, यहाँ तक कि सामान्य नीति शास्त्र परम राजनीतिज्ञ तथा नीतिविद चाणक्य पंडित के अनुसार मैं शूद्र से भी निम्न व्यक्ति से शिक्षा ग्रहण करने में कोई हानि नहीं मानी चाहिए। कि अगर ये देखना चाहिए कि वो शिक्षा कितनी प्योर है, ये नहीं देखना चाहिए कि उसका जन्म कितना। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे, चाणक्य देव भी कहते हैं कि भले ही शूद्र से भी गिरी हुई जाति क्यों न हो, भले उसका कुल भले कितना ही छोटा क्यों न हो, उसका जन्म भले कितने ही निम्न कोटि के कुल में पैदा हुआ हो वो, लेकिन फिर भी यदि आप देखते हो कि वो बहुत अच्छी शिक्षा दे रहा है तो आप उसे शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। यह उत्तर का एक अंश हुआ। दूसरा अंश यह है कि विदुर वास्तव में शूद्र नहीं थे, उन्हें मंडूक मुनि के शाप के कारण 100 वर्ष तक शूद्र की भूमिका निभानी थी। वे यमराज के अवतार थे जो 12 महाजनों में से एक थे और ब्रह्मा नारद शिव कपिल भीष्म प्रहलाद जैसे महापुरुषों के समान ही उच्च पद पर थे। महाजन होने के कारण यमराज का कर्तव्य है कि वे विश्व के लोगों को भक्ति संप्रदाय का उसी प्रकार उपदेश दे जिस प्रकार नारद ब्रह्मा तथा अन्य महाजन करते हैं, किंतु यमराज सदैव अपने राज्य में पाप कर्म करने वालों को दंड देने के कार्यों में ही व्यस्त रहते हैं। भगवान ने यमराज को एक विशेष ग्रह के लिए जो पृथ्वी से कुछ लाखों मील दूर पर स्थित है नियुक्त किया है, जहाँ वे मृत्यु के बाद भ्रष्ट जीव आत्माओं को लेकर जाते हैं और उनके पाप कर्मों के अनुसार दंड दें। अतएव यमराज को दुष्कर्म करने वालों के दंड देने के उत्तरदायी काम से ही फुर्सत नहीं मिल पाती है। दुष्कर्म करने वालों की संख्या सत्कर्मियों से अधिक है, अतएव यमराज को भगवान द्वारा अधिकृत अन्य देवदूतों की उपेक्षा अधिक कार्य करना पड़ता है। लेकिन यमराज तो भगवान की महिमा का उपदेश देना चाहते हैं, अतएव भगवान की इच्छा से मंडूक मुनि के शाप के कारण उन्हें विदुर के अवतार रूप में इस पृथ्वी पर आना पड़ा और भक्त की तरह कठिन श्रम करना पड़ा। ऐसा भक्त ना तो शूद्र होता है, ना ब्राह्मण, ना सन्यासी, समाज के ऐसे विभाजन से परे रहता है। और जिस प्रकार भगवान शूकर का अवतार ग्रहण करके भी ना तो शूकर है ना ही ब्रह्मा, वे समस्त संसारी प्राणियों से ऊपर हैं। कभी कभी भगवान तथा उनके विभिन्न वैद्य भक्तों को बद्ध जीवों के उद्धार हेतु निम्नतर प्राणियों की भूमिका अदा करनी पड़ती है, किंतु भगवान तथा उनके शुद्ध भक्त सदैव दिव्य पथ पर बने रहते हैं। जब यमराज विदुर के रूप में अवतरित हुए तो कश्यप तथा अदिति के अनेक पुत्रों में से अर्यमा जी ने यह पद संभाला। आदित्यगण अदिति के पुत्र हैं और आदित्यों की संख्या 12 है। अर्यमा इन 12 आदित्यों में से थे, अतएव विदुर की अनुपस्थिति में 100 वर्षों तक यमराज के कार्यभार को संभालने के लिए अर्यमा का चुनाव ठीक ही था। निष्कर्ष यह निकला कि विदुर कभी भी शूद्र ना थे, वे तो शुद्धतम ब्राह्मण से भी महान थे। श्रील प्रभुपाद की जय हो। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर हमें बहुत ही सुंदर बता रहे हैं कि भक्त की एक ही इच्छा होती है
कि मैं भगवान के विषय में सबको बताऊं, सब जीवों को उपदेश दूं, भगवान की भक्ति करूं, भगवान की सेवा करूं, भक्तिमय कार्य करूं, लेकिन भगवान की तरफ से उसको जो नियत कर्म मिलते हैं उनके कारण कभी कभी ऐसा होता है, जैसे यमराज जी को इतना ही कठिन कार्य मिला है कि उसको सारा दिन बस पापियों को सजाएं देनी पड़ती हैं, लेकिन मन में यही इच्छा होती थी कि क्या काश मैं भी भगवान की सेवा कर सकूं, भगवान की लीलाओं में सहभागी हो सकूं। तो उनके हृदय की इस तीव्र इच्छा को देखकर भगवान की कृपा से उन्हें अवसर प्राप्त हुआ और मंडूक मुनि, जैसे मैंने आपको बताया था कि उनके यहाँ पर कुछ चोर छिप गए थे और राजा ने चोरों के साथ साथ मंडूक मुनि को भी गिरफ्तार कर दिया था और उनको भी भाले भोंक के मारने का प्रयास किया गया, बहुत प्रयास किया गया, लेकिन जब देखा उन सिपाहियों ने कि मंडूक मुनि को कुछ भी नहीं हो रहा है, तब उन्होंने जाके राजा को बताया कि इसको ये कौन से तपस्वी ब्राह्मण है, इनको हम कितना मारने का प्रयास कर रहे हैं, मार ही नहीं रहे। तब राजा को अक्कल आ गई कि ये साधारण तो प्राणी नहीं हो सकते जो बालों से भी नहीं मर रहे। तो राजा ने तो उनसे बहुत क्षमा याचना की, मगर मंडूक मुनि ने कुछ भी नहीं कहा उनसे और डायरेक्ट से चले गए यमराज जी के पास। उन्होंने बताया कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, किस अपराध की सजा मिली है। जब यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा कि क्या अपराध किया, तो चित्रगुप्त ने कहा बचपन में, बहुत पहले किसी जन्म में, बचपन में इन्होंने एक पतंगे के ऊपर कुछ तिनके से मारा था, तो इसके कारण। तो फिर तभी मंडूक मुनि ने कहा कि मैं इतना छोटा था, छोटा कोई बालक होता है उसको तो कुछ पता नहीं होता धर्म और अधर्म के बारे में, आप तो धर्मराज यमराज हो, आपको तो पता होता है ना, छोटे बच्चे को, छोटे बालक को इतना बड़ा दंड एक छोटे से अपराध के लिए नहीं देना चाहिए, आपने शूद्र जैसा कार्य किया, आप जाइए शूद्र का जन्म लीजिए। तो फिर इस प्रकार विदुर जी के रूप में, शूद्र के रूप में संसार में आए। वास्तव में ये भगवान की योजना थी, विदुर जी को जो कि यमराज जी हैं, जो कि 12 महाजनों में से एक हैं, ब्रह्मा शिव कपिल नारद और जनक प्रहलाद इत्यादि जिस प्रकार से महाजन हैं, 12 महाजनों में यमराज जी का नाम आता है, तो उनकी इच्छा थी इसलिए भगवान ने ये लीला की थी। बहरहाल यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर बात बताई कि वो भले ही शूद्र के स्वरूप में जन्म लिए थे, परंतु फिर भी वे शुद्धतम ब्राह्मण से भी ज्यादा महान थे, क्योंकि वास्तव में भगवान के शुद्ध भक्त थे और यमराज जी थे। आगे सुत गोस्वामी कहते हैं, युधिष्ठिरो लब्ध राजो दृष्ट्वा पौत्रम कुलम धरम भ्रातृभि लोकपाला भय मुमुदे परयाश्रिया। युधिष्ठिरो लब्ध राजो दृष्ट्वा पौत्रम कुलम धरम भ्रातृभिर्लोकपाला भय मुमुदे परयाश्रिया। युधिष्ठिरो लब्ध राजो दृष्ट्वा पौत्रम कुलम धरम भ्रातृभिर्लोकपाला भय मुमुदे परयाश्रिया। शब्दार्थ, युधिष्ठिरो लब्ध राज्यो, जब युधिष्ठिर महाराज को अपना पैतृक राज्य का अधिकार प्राप्त हुआ, उनको जब राज, वैसे तो युधिष्ठिर महाराज जो है वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, अर्जुन भी युद्ध नहीं करना चाहते थे, हम श्रीमद् भगवत गीता में देखते हैं। उनको राज्य का कोई मोह नहीं था, उनको राज्य सिंहासन का कोई मोह नहीं था, वो चाहते ही नहीं थे कि हम युद्ध करें, परंतु जब युद्ध हुआ और उनको राज्य प्राप्त हुआ, तब भी युधिष्ठिर महाराज को बहुत दुख हो रहा था कि मेरे कारण इतना अत्याचार हुआ, इतने सारे कुटुंबियों का वध हुआ, सबका अपराधी मैं हूँ, जैसे हमने पहले पढ़ा था। वो बहुत ज्यादा दुखी थे, भगवान श्री कृष्ण ने उनसे अश्वमेध यज्ञ करवाया और भीष्म पितामह से भी उन्हें बहुत बहुत उपदेश दिलवाया, लेकिन फिर
इतना सब बहुत समय बीतने के बाद दृष्टा पौत्रम कुलधरम, जब उन्होंने देखा, क्या देखा, पौत्रम, सब कोई का नाश हो गया, लेकिन एक मनुष्य की एक समय का समय जो है ना, वो बड़े से बड़े घाव को भर देता है। कोई ना कोई ऐसी संसार में हमें खुशी मिल जाती है कि पिछले दुख हम भूलने लगते हैं। तो जब उन्होंने अपने पौत्र को देखा, पौत्र कौन थे, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित महाराज, कुलम धर्म जो कि वंश के अनुकूल इतने सुंदर पुत्र थे, पौत्र थे, और उनको सब दुख भूल गया और उन्हें ये एहसास होने लगा कि अब परीक्षित महाराज बड़े होंगे, वो हस्तिनापुर का राज्य करेंगे, इतना सुंदर तब राज्य होगा ये, तो बहुत ज्यादा आनंद आता था जब वो उन्होंने परीक्षित महाराज को देखा। युधिष्ठिर लब्ध राजो दृष्ट्वा पौत्रम कुलम धर्म भातृभिर् लोकपाला भय, भातृभिर् यानी भाइयों से लोकपाला भय, जो सभी पटु प्रशासित थे, जितने भी उनके भाई थे, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, वो बहुत ही अच्छे प्रशासक थे, मतलब पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे थे। मोमोदे परया, मोमोदे का मतलब होते जीवन का भोग किया, पहले तो वो किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं थी, लेकिन अपने भाइयों के साथ मिलकर फिर ऐश्वर्य को असामान्य श्रेया, परया का मतलब होता है उनको जो ये राज्य मिला था ना हस्तिनापुर का, वो कोई साधारण राज्य नहीं था, बहुत ही सुंदर राज्य उनको मिला था और बहुत असामान्य राज्य था, ऐसा ऐश्वर्य का उन्होंने भोग किया और वो बहुत आनंद से जीने लगे जब उनको हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त हुआ तो, और जब अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित महाराज का जन्म हुआ तो। अनुवाद देखिए, अपना राज्य वापस पाकर तथा ऐसे पौत्र का जन्म देखकर जो उनके परिवार की प्रशस्त परंपरा को आगे चलाने में पटु था, महाराज युधिष्ठिर ने शांतिपूर्वक शासन चलाया और उन छोटे भाइयों की सहयोग से जो सारे के सारे पटु प्रशासक थे, सामान्य ऐश्वर्य का भोग किया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर तथा अर्जुन दोनों ही कुरुक्षेत्र युद्ध के शुरू होने के दिन से ही अप्रसन्न थे, किंतु युद्ध में स्वजनों को मारने की अनिच्छा होते हुए भी उन्हें कर्तव्य निर्वाह करना पड़ रहा था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की परम इच्छा से इसकी योजना की गई थी। युद्ध के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ऐसे सामूहिक संहार से दुखी थे। एक तरह से पांडवों के बाद कुरुवंश को चलाने वाला कोई नहीं था। यदि कोई आशा शेष थी तो वह पुत्रवधु उत्तरा के गर्भ में स्थित बालक था और उस पर भी अश्वत्थामा ने प्रहार कर दिया, किंतु भगवान की कृपा से वह बालक बच गया था। अतएव सभी उपद्रवों के शांत होने तथा राज्य में शांति स्थापित होने पर और एकमात्र बचे हुए बालक परीक्षित को देखकर युधिष्ठिर संतुष्ट थे और भौतिक सुख के प्रति जो सदैव क्षणिक और भ्रांत करने वाला होता है, आकर्षण ना होने पर भी मानव होने के कारण उन्हें कुछ चैन मिला था। श्री प्रभुपाद की जय हो। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मानव, हर मनुष्य का ये स्वभाव है कि जब खुशियां आती हैं, जब सुख के दिन आते हैं, तो वो चैन से जीने लगता है, वो ये भूल जाता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, फिर उसी में बहुत ज्यादा लीन हो जाता है। अभी जैसे हम जानते हैं कि युधिष्ठिर महाराज यहाँ पर थे हस्तिनापुर में और भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में थे और सब द्वारिकावासी भी चले गए थे, लेकिन वो अपना आनंद से यहाँ पर अपना राज्य कर रहे थे। पहले बहुत दुखी थे, लेकिन जैसे ही दुख के दिन खत्म हुए, परीक्षित महाराज का जन्म हुआ और अश्वत्थामा के तीर से, ब्रह्मास्त्र से भी उनको भगवान श्री कृष्ण ने बचा दिया, फिर वो आनंद से जी रहे थे। तो ये देखकर विदुर जी को ऐसा लगा कि इस संसार के लोग कैसे होते हैं, सदैव क्षणिक खुशियों में फंसे रहते हैं। और फिर उसके बाद विदुर जी क्या कहते हैं या क्या सोचते हैं वो हम कल पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा। हरे कृष्ण।